ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्यारे शैवम डॉट आर की श्रोताओं, अगला कार्यक्रम बच्चों की कहानी का समय है। इसमें आप तिरुविळियाडल पुराण की तीसरा भाग को सुनने वाले हैं। इस कार्यक्रम को पेश करते हैं श्रीमती शांता सुंदरराजन जी। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।
बच्चों, तिरुविळियाडल पुराणम में आज का तीसरा कड़ी है। आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी ना? पढ़ाई के साथ साथ खुली हवा में खेलना न भूलना। उषा, तुम भी तैयार हो ना? शिव पुराण में आज की कड़ी में एक और लीला सुनेंगे।
दीदी, पहले मदुरई नगर संबंधित कुछ और ज्ञान प्राप्त करें।
अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वैसे तो मेरे पास कुछ जानकारियाँ हैं। पुरातन मदुरई बहुत प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक और प्रमुख शहर माना जाता है। मदुरई और तमिल साहित्य, इन दोनों का गहरा संबंध है। तमिल साहित्य इतना पुराना है कि उसका इतिहास तीन कालों में बांटा गया है। इसे संगम तमिल भी कहते हैं। पहला संगम काल हिमालय पर्वत से भी पुराना माना जाता है। आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी में ऑस्ट्रेलिया खंड उत्पन्न होने से पहले ही हिमालय पर्वत इस रूप में नहीं था, तब लेमूरिया नामक एक खंड था।
कहा जाता है कि आज के हिमालय पर्वत भू की कुछ नियमित आवर्तन और संचलन के कारण हिमालय पर्वत बना। लेमूरिया में ही पहला संगम तमिल साहित्य का उद्भव हुआ था। लेमूरिया खंड मानो एक काल्पनिक मिथक बन गया।
अच्छा बच्चों, अभी कहानी सुने। आज की इस कड़ी में एक और पौराणिक कथा सुनेंगे। पिछली कड़ी में हमने इंद्रदेव गर्वभंग की घटना सुनाई। यह भी इंद्रदेव और उसका वाहन जो हाथी है, उसका गर्वभंग की ही कहानी है। उस हाथी का नाम है ऐरावत। ऐरावत को अपनी सुंदरता और गांभीर्यता पर बहुत ही गर्व हो गया था। एक दिन जब वह विशाल राजपथ में चल रहा था, तब सामने से महर्षि दुर्वास आए। ऐरावत पर साक्षात इंद्रदेव सवार थे। दुर्वास महर्षि ने इंद्रदेव को एक कमल की फूल दिया। वह फूल शिवजी का प्रसाद था, लेकिन इंद्र ने उसकी उपेक्षा की और उस कमल फूल को ऐरावत के सिर पर रख दिया।
पर बच्चों, जानते हो इस ऐरावत ने क्या किया? उस घमंडी हाथी ने कमल को निकालकर अपने पांव के तले कुचला दिया। दुर्वास महर्षि तो अपने गुस्से के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ना? तुरंत उन्होंने दोनों को शाप दे दिया। ऐरावत से कहा, तुमने एक महर्षि की उपेक्षा की है, तुम हजार साल जंगल में घूम फिरोगे, तुम्हारे लिए अपना कहने कोई नहीं रहेगा। ऐरावत को अपनी गलती पर शर्मिंदा हुई। उसने महर्षि से क्षमा मांगी। उन्होंने दया दिखाया और कहा, अनजाने में ही सही, तुम शिवजी की पूजा करोगे और अपने अभिशाप से मुक्ति पाओगे।
अब इंद्र की बारी थी। वह अंदर से कांप रहा था। हमें अक्सर ऐसा ही होता है ना, बिना सोचे समझे अति अहंकार के वश में होकर कुकर्म कर देते हैं, बाद में पश्चाताप भी करते हैं। इंद्र का भी ठीक वही हाल था। उषा, जानते हो दुर्वास मुनि ने इंद्र को क्या शाप दिया था?
दुर्वास ने इंद्र से कहा, तुम भी तो मेरे शाप के पात्र हो, मुझे देखकर भी तुम हाथी से नीचे नहीं उतरा। तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया था और आशीर्वाद भी नहीं मांगा। घमंड को तुमने अपने सिर से उतरने नहीं दिया। नतमस्तक न होने के कारण तुम्हारा आशीष एक साधारण मनुष्य के हाथ काट दिया जाएगा।
इंद्रदेव बहुत पछताया और क्षमा प्रार्थना की। दुर्वास जी कहने लगे, तुम्हारा शाप को मैं कम करता हूँ। जो तुम्हें मारने आएगा वह शिवजी का ही अवतार होगा और सिर्फ तुम्हारे मुकुट का अपहरण कर लेगा। इस तरह तुम्हारे सिर का मुकुट का संकट के साथ टल जाएगा। यह कहकर वे चले गए।
ऐरावत तत्काल भूलोक में एक जंगल में चला गया। 100 साल जंगल जंगल भटका फिरा। उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंत में जब वह कदंब वन पहुंचा, तो उसे अपने पूर्व जन्म का याद आया। उसे अपनी पहचान हो गई। शिवजी को प्रार्थना करने लगा और उन्हें इधर उधर ढूंढने लगा। पास में ही वही सोने का कमल का तालाब देखा।
बच्चों याद है ना, देवेंद्र जब कदंब वन आया था, उसने उसी सोने की कमल का तालाब को देखा था।
उस तालाब में स्नान करते ही उसे अपना पुराना आकार मिल गया। सफेद और सुंदर हो गया। उसके तन में वही गंभीरता छा गई। तालाब में से कमल के फूलों को तोड़कर आसपास शिवलिंग को खोजने लगा। ईश्वर की कृपा से उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। अत्यंत भक्ति और भावपूर्ण हृदय से उसने पूजा की। शिवजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें स्वर्ग में इंद्रदेव के पास लौटने की अनुमति दी।
ऐरावत वहीं पर ऐरावतपुरम नामक एक नगरी का निर्माण किया और उस शिवलिंग के लिए एक मंदिर भी बनवाया। उस शिवलिंग को अपना यजमान इंद्र के याद में इंद्रेश्वर नामकरण किया। आजकल इस शहर को ऐरावत नल्लूर कहते हैं। अब यह छोटा सा गांव बनकर रह गया है। ऐरावत कुछ दिनों बाद इंद्रलोक लौट चला। बच्चों अब इंद्र को सुख और चैन से इंद्रलोक को राज्य करने देंगे। उसके मुकुट अपहरण होने में और देर है।
हम अब भूलोक पर मदुरई माँ नगरी लौटेंगे। बच्चों हमने अभी तक मदुरई के बारे में कुछ पौराणिक कथाएं सुनी, अब कुछ ऐतिहासिक भी हो जाए। जैसे शिवजी ने आदेश दिया, उसी तरह पांड्य राजा राज्यभार संभालने लगे। उनका राज्य कदंब वन के पास ही ऐरावतपुरम या मणवूर नाम से जाना जाता है। उन राजाओं में कुलशेखर पांड्य नामक राजा सुप्रसिद्ध रहा। वह एक धर्मवान राजा था। चारों तरह से राज्य सुरक्षित और सकुशल था। वह शिवजी का बड़ा भक्त भी था।
एक दिन धनंजय नामक एक व्यापारी बहुत सारा धन कमाकर लौट रहा था। कदंब वन के पास आया। रात हुई और वहीं पर विश्राम करने लगा। आधी रात में उसने एक दिव्य विमान को आकाश से उतरते हुए देखा। वह विमान ऐसा चमक रहा था मानो कोटि सूर्य की किरणें वहां से प्रकाशित हो रही हो। उसके अंदर शिवजी विराजमान थे, यानि एक दिव्य शिवलिंग था। धनंजय आश्चर्यचकित हो गया। आधी रात में इंद्रदेव के साथ और भी देवगण आए और पूरी रात शिवजी की पूजा अर्चना और आराधना की। प्रातः काल होते ही सब कुछ अंतर्ध्यान हो गया। धनंजय को कुछ भी समझ में नहीं आया। तुरंत वह राजा के पास जाकर सब कुछ बता दिया।
कुलशेखर पांड्यन पुलकाल की खो उठा। कहने लगा, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हें यह दिव्य अनुभव प्राप्त हुआ है। हम सब कल ही वहाँ जाएंगे। राजा ने धनंजय को साधर घर भेज दिया। दिन भर महादेव की कृपा के बारे में ही सोच रहा था। रात में जब आंख लग गई तो एक सुंदर सा स्वप्न देखा। साक्षात महादेव एक सिद्ध पुरुष के रूप में प्रदर्शित हुए। कहने लगे, हे वत्स, हमें तुम्हारी भक्ति पर अति प्रसन्न हुए। एक राज ऋषि की तरह तुम जैसे राज्य कर रहे हो वह बहुत ही प्रशंसनीय है। तुम्हारे संतति में ही देवी उमा का अवतरण होगा। पूर्व नियोजित योजना के अनुसार हमारे अंश का ही पुत्र इंद्र का गर्व भंग करेगा। कदंब वन की जगह पर एक भव्य नगरी का निर्माण करो, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर महादेव अप्रत्यक्ष हो गए। कुलशेखरन आनंद सागर में मग्न हो गया। बच्चों, सच्ची श्रद्धा और भक्ति अमूल्य है।
राजा अपने परिवार और धनंजय के साथ उसी जगह पर गया। अपने वीरों को उस जंगल के पेड़ों को निकालकर साफ करने का आदेश दिया। हजारों संख्या में कर्मचारी आए और उस नगरी का निर्माण करने लगे। नगर निर्माण सुव्यवस्थित रूप में बना। नगर के ठीक बीच में देवी मीनाक्षी समेत चुक्कनाथर का मंदिर बना। मंदिर भव्य ढंग से बन गया। उसकी चारों दिशाओं में विशाल रास्ते बने। उसकी अगले प्रांगण में मंडप, यात्रीगर, दुकानें बने। उसके पश्चात कुम्हारों, लोहारों, सुनारों, धोबियों जैसे समाज के अन्य कर्मचारियों के लिए भी मकाने बनाए गए। इन सब की रचना करने में वही सिद्ध पुरुष जो राजा के सपने में आए थे बार बार प्रत्यक्ष होकर मार्गदर्शन किए।
इस तरह एक शहर उत्कृष्ट तरीके से विकसित हुआ। एक शुभ योग और शुभ दिन में इस शहर का उद्घाटन हुआ। मंदिर के प्रांगण में हवन कुंड और वेद मंत्रों के बीच गोपुरम और शिलाओं का कुंभाभिषेक हुआ। तब महादेव के जटा मुकुट में सुशोभित चंद्रमा से कुछ अमृत बिंदुएं गिर पड़ी। अमृत होने के कारण वे मधुर थी, इसलिए पांडे राजा इस नगरी को मदुरापुरी या मदुरई महानगर नाम से नामकरण किया।
बच्चों, आज का मदुरई नगर मूल रूप में अब भी वैसे के वैसे ही है जैसे बनाया गया था। हाँ, आधुनिकीकरण से कुछ बदलाव तो आ चुके हैं। कहा जाता है चंडीगढ़ तो 21वीं सदी में बना सुयोजक नगर है, परंतु बहुत सदियों से पहले ही मदुरई महानगर सुव्यवस्थित योजना के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व धरोहर के अंतर्गत इस नगरी को पाया जाता है। इस तरह कुलशेखर पांडियन बहुत वर्ष धर्म मार्ग पर राज्य करते हुए और महादेव की भक्ति में अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए परम पद प्राप्त कर दिया। अगली कड़ी में हम मिलेंगे।